दोस्तों, मैं सौम्या। कल मैंने आपको बताया था कि संजीव भैया ने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मुझे कोचिंग में रुकने के लिए कहा था, और वो मेरे लिए कुछ केक चॉकलेट्स ले आए थे। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक देते हुए कहा, इसको खोल कर देखो। मैंने उसको खोला तो इसमें गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस थी। मैंने पूछा, भैया ये किसके लिए? उन्होंने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और ये तुम्हारे लिए है। मैंने नीचे देखा तो उसमें एक फुल नेट की ब्रा और पैंटी भी रखी हुई थी। उन चीज़ों को देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आई। मुझे शर्माते हुए देखकर भैया ने कहा, तुम इन सब को अभी पहनो, उसके बाद ही केक काटना। मैंने कहा, यहाँ कहाँ कपड़े बदलूँ? भैया ने कहा, तुम संजय सर के केबिन में जाकर बदल लो। और मैं चली गई। उसके बाद मैंने पहले तो अपने सारे कपड़ों को उतारा, फिर अपने मदमस्त बदन को देखने लगी। मैं पूरी नंगी होकर अपने दूध मसलने लगी। फिर मैंने संजीव भैया के दिए हुए ब्रा, पैंटी और फ्रॉक को पहन लिया। फ्रॉक के पीछे का जिप कुछ ज़्यादा ही लंबा था। मैं जिप को अच्छे से उसको लगाकर बाहर आ गई। भैया तो मुझे देखकर देखते ही रह गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत सुंदर परी जैसी लग रही हूँ। मैं केक काटने के लिए टेबल की तरफ आई। फिर जैसे ही मैंने केक काटा, भैया ने उसमें से एक टुकड़ा लेकर मेरे चेहरे और गर्दन पर मल दिया। इस पर मैं भी केक के टुकड़े को लेकर उन्हें लगाने दौड़ी तो वो भागे। ऐसे ही कुछ देर तक खेल चलता रहा। उसके बाद भैया ने मुझे कस कर पकड़ लिया और मेरे हाथ से केक के टुकड़े को लेकर मेरी फ्रॉक के पीछे की जिप को पूरी तरह खोल कर लगा दिया। मैं तो जैसे दंग रह गई। मेरी नंगी पीठ पर भैया केक मल रहे थे। मैं उनकी बाहों में फंसी हुई छटपटा सी रही थी, और केक मलते मलते मेरे भी बदन में एक लहर सी उठी और मुझे भी लंड की ज़रूरत महसूस होने लगी। वहाँ पर कोई नहीं था, मैं और संजीव भैया थे। उन्होंने केक के टुकड़े को लेकर मेरे बूब्स पर मसलना शुरू कर दिया। मैंने भी बड़े प्यार से अपने दूध उनके हवाले कर दिए। उन्होंने मेरा साथ देखा तो अगले ही पल मेरी पैंटी में हाथ डाल दिया। मैं आह आह के सित्कार भरने लगी। उससे संजीव भैया भी एक्साइटेड हो गए। अब उन्होंने मुझे टेबल पर बिठाया, मेरे मम्मो पर केक लगा चाटने लगे और मेरे निप्पल्स को ज़ोर ज़ोर से चूसने लगे। फिर वो नीचे की तरफ बढ़े और मेरी नाभि को चूमने लगे। कुछ देर बाद वो मेरी चिकनी बुर तक पहुँच गए। अब तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था और उन्होंने चाटना शुरू कर दिया। मैं एकदम से उत्तेजित हो गई और भैया से लंड पेल देने की बात कही। भैया ने तुरंत मुझे चुदाई की पोजीशन में लिटाया और अपना मोटा काला लंड मेरी चूत में पेल दिया। इतने दिनों से लंड की प्यासी मेरी चूत ने कुछ ही झटकों में लंड को जज्ब कर लिया और मज़ा लेने लगी। भैया अपना पूरा लंड मेरी चूत में पेल कर मुझे ज़ोर ज़ोर से चोद रहे थे। तेज गति से चुदने के कारण मस्त सटासट की आवाज़ आ रही थी। उसके करीब 15 मिनट बाद भैया भी झड़ गए। अब मैं उनका मोटा लंड अपने मुंह में लेकर चूसने लगी थी। उसके बाद मैंने उनके लंड का गर्म पानी अपने मुंह में ले लिया। अब भैया और मैं बहुत थक गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। ऐसे ही अब संजीव भैया को जब भी समय होता वो मुझे चोद दिया करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एक बार मेरी तबीयत खराब हुई और मैं 5 दिन तक कोचिंग पर नहीं जा सकी। एक दिन संजय सर ने मुझे कॉल करके मेरा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, मुझे 2-4 दिन और लगेंगे। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम अच्छे से रहो और उसके बाद ही कोचिंग आना। मेरे पास समय हुआ तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है सर। फिर अगले दिन करीब 11 बजे वो मुझसे मेरे घर मिलने आए। उस समय मम्मी पापा नहीं थे, दोनों किसी काम से बाहर गए थे और मैं नहाने जा रही थी। मैंने घर के मेन गेट को बंद कर दिया था, पर न जाने क्यों उस समय ठीक से बंद नहीं हुआ था। उसके बाद मैं अपने घर के आंगन में नहाने के लिए चली आई। हमारा घर काफ़ी पुराना था जिस वजह से बाथरूम नहीं था, हम आंगन में ही नहाते थे। मैं आंगन में आकर नल चलाकर बाल्टी में पानी भरने लगी। इतने में ही संजय सर मुझे बाहर से सौम्या सौम्या कहकर अंदर आए। पानी की आवाज़ से मैं उनकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाई। उस समय बाल्टी में पानी भर रहा था और मैं अपने कपड़े खोल रही थी। कुछ ही देर के बाद मैं पूरी नंगी हो गई और अपने बालों को पानी से भिगोकर शैम्पू लगाने लगी। और संजय सर मुझे ढूंढते ढूंढते अंदर की तरफ आ गए। मैं नहाने में मग्न हो गई। मैंने शैम्पू अपने बालों से लेकर फिर साबुन अपने बूब्स पर मलना शुरू कर दिया। देखते देखते मेरा पूरा नंगा बदन साबुन के झाग से लिपट गया। फिर मैं अपने बूब्स को रगड़ने लगी और अपने बुर को भी उंगली डालकर साफ करने लगी। रगड़ रगड़ नहाने के बाद मैं खड़ी हुई और अपने भीगे हुए जिस्म को तौलिए से पोंछने लगी। पूरे जिस्म को अच्छे से पोंछने के बाद मैंने अपने भीगे बालों को भी पोंछा। फिर मैंने तौलियों को वहीं आंगन में टांगा और नंगी ही रूम की तरफ चल दी। यह सब संजय सर छुप छुप कर देख रहे थे। फिर मैंने रूम में आकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाया, उसके बाद बालों को बांधा और वैसे ही नंगी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। घर में तो कोई नहीं था तो मुझे नंगी रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आराम से लेटी हुई थी कि तभी अचानक से पीछे से संजय सर ने आकर अपने दोनों हाथों से मुझे जकड़ लिया। मैं डर गई कि पता नहीं कौन आ गया। हिम्मत करते हुए मैंने पूछा कि सर आप कब आए? तो उन्होंने कहा कि तुम नहाने में मग्न थी और दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर आया और अपने आप को तुम्हें निहारने से रोक नहीं पाया। अब वो मेरे बिस्तर पर मेरे ऊपर चढ़ चुके थे और मेरे मम्मों के दोनों निप्पलों को बारी बारी से चूस रहे थे, मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। संजय सर ने मेरी आंखों में देखा और पाया कि मेरी मूक स्वीकृति है कि आप मुझे जोत दीजिए संजय सर। संजय सर ने अपने लंड को धीरे धीरे मेरी चूत में डालना शुरू किया और मैं भी मस्त हो गई। संजय सर मुझे तेज़ी से चूत रहे थे और मैं अपने सर से चूत चुदवाए जा रही थी। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, सौम्या तुम तो बहुत मस्त माल निकली, आज तुम्हें चूत कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अभी तुम ऐसे ही नंगी रहना, तुम नंगी बहुत अच्छी लगती हो। मैंने उनकी बात पर ठीक है मैं उत्तर दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर मुझे चोदा, फिर अपने कपड़े पहने और वापस जाने के लिए निकल गए। मैं नंगी ही लेटी रही और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर इन सब चीज़ों को याद करके मदहोश होने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कमज़ोरी लगने लगी और हल्का सा बुखार महसूस होने लगा। शायद चूत की गर्मी शांत हो गई थी, इस वजह से मुझे आराम की ज़रूरत थी। फिर 3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक होने पर मैं कोचिंग गई तो वहाँ सबने पहले मेरा हालचाल पूछा। मैंने बताया कि अब मैं ठीक हूँ, सबने खुशी जाहिर की। दोपहर के समय जब सब लंच करने को गए हुए थे, उसी वक्त वहाँ कोचिंग का चपरासी भोलू आया। उसने सबसे पहले मेरी तबीयत पूछी, मैंने कहा ठीक हूँ। फिर उसने झिझकते हुए कहा, दीदी एक बात है जो मुझे आपसे बोलना है। मैंने कहा हाँ बताओ भोलू। उसने कहा कि आपके जन्मदिन के दिन जब सब लोग चले गए थे, उस समय आप और संजीव भैया थे, तो उस समय मैं भी वहाँ संजय सर के बोलने पर एक काम से वापस आया था और मैंने आपके और संजीव भैया के बीच में जो कुछ भी हुआ वो देख लिया था। मैंने आपको नंगा भी देखा, उसके बाद संजीव भैया से आपकी चुदाई होते हुए भी देखी। उसकी बातों को सुनकर मैं घबरा गई। फिर मैंने उससे पूछा, तो क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो ये बताओ? उसने कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने मन ही मन में सोचा कि साले तू मुझे चोदना चाहता है और क्या चाहेगा। मैंने फिर भी कहा कि हाँ बुरा नहीं मानूंगी, जल्दी बताओ। उसने कहा मैं भी आपको नंगी करके चोदना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा ठीक है चोद लेना जैसे तुम्हारा मन हो। मेरी बात सुनकर वो खुश हुआ, उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया।